أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع گفتگو سیرت امام علی نقی علیہ السلام ہے، اور جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ جب سیرت معصومین علیہم السلام بیان کرتے ہیں تو ان کے اسم مبارک اور ولادت سے لے کر شہادت تک کے حالات بیان کرتے ہیں. امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مقام مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں سریا بتایا گیا ہے، جسے آپ کے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آباد کیا تھا. امام دنیا میں تشریف لائے اور دنیا کو اپنے نور سے روشن کیا. آپ کے والد بزرگوار امام محمد تقی علیہ السلام اور والدہ جناب سمانہ ہیں، جو سیدہ کے نام سے مشہور تھیں، اور جناب عباس قمی نے احسن المقال میں لکھا کہ یہ معظمہ ہمیشہ مستحب روزی سے رہتی تھیں. زہد اور تقوی میں ان کی مثل و نظیر نہ تھی. ان کی کنیت ام الفضل بیان کی گئی ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ میری والدہ اہل جنت میں سے ہیں، اور شیطان ان کے قریب نہیں پھٹکتا، اور کسی جبار کا مکر ان تک نہیں پہنچے گا. خدا ان کا محافظ و نگہبان ہے. امام کا اسم مبارک علی ہے، کنیت ابوالحسن ہے، اور چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام کی کنیت بھی ابوالحسن ہے، اس لیے امام علی نقی علیہ السلام کو تعین کے لیے ابوالحسن ثالث بھی کہا گیا، اور کبھی ثالث کی جگہ ہادی یا عسکری کا ذکر کرتے ہیں. آپ کے زیادہ مشہور القابات نقی ہادی ہیں، اور نجیب، مرتضی، عالم، فقی، ناصح، امین، طیب بھی کہا جاتا ہے. امام علی نقی علیہ السلام کے تمام اخلاق آپ کے آباء و اجداد کے اخلاق کے مثل تھے. جب رات ہوتی تو آپ قبلہ رخ ہو کر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے، اور ایک لمحہ عبادت سے غافل نہ رہتے. امام کے شمائل میں ہے کہ آپ میانہ قد تھے، چہرہ مبارک سرخ و سفید تھا، آنکھیں بڑی اور ابرو کشادہ تھے، چہرہ مبارک خوبصورت تھا. جو غمگین شخص آپ کے چہرہ مبارک پہ نگاہ کرتا تو اس کے غم زائل ہو جاتے. آپ محبوب القلوب تھے، صاحب حیبت تھے. آپ کے لبہائے مبارک پر ہمیشہ تبسم و ذکر خدا رہتا تھا. اور جیسا کہ ہم یہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ ایام ہفتہ کے 7 دنوں میں سے ہر دن آئمہ معصومین سے منسوب ہیں. مثلا بدھ کا دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، اور امام محمد تقی علیہ السلام، اور امام علی نقی علیہ السلام سے منسوب ہے. جو دن جن معصومین سے منسوب ہیں اس دن کی ان معصوم کی زیارت ہے، اور جو کہ مفات الجنان میں موجود ہے اسے پڑھا جائے. اس کے علاوہ ایک چیز اور، وہ یہ کہ علماء نے دن کو 12 ساعتوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر ساعت کو 12 ائمہ میں سے ایک ایک امام کی طرف نسبت دی ہے، اور ہر ساعت کی دعا ہے. یہ دعائیں بھی مفات الجنان میں ہیں. 10ویں ساعت 10ویں امام علی نقی علیہ السلام سے منسوب ہے، جو کہ نماز عصر کے 2 گھنٹے بعد سے سورج کے زرد ہونے سے پہلے تک ہے. اس وقت کی اس ساتھ کی بھی دعا ہے. اس میں اللہ کی حمد کے بعد اپنی حاجتوں میں امام کو وسیلہ بنا کر دعا کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ معصومین علیہم السلام کے حرز بھی بیان ہوئے ہیں. جیسا کہ ہمارے یہاں جو حرز مشہور ہے وہ حرز جواد مشہور ہے. حرز یعنی پناہ گاہ، ضامن. یعنی حرز کے ذریعے جب ہم حرز کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کے ذریعے خود کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہوتے ہیں. ان میں خدا سے دعا کی جا رہی ہے. حرز امام علی نقی علیہ السلام مفات الجنان میں موجود ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد یوں خدا سے دعا کی گئی ہے، خدا سے پناہ طلب کی گئی ہے کہ اے اپنی عزت میں بڑی عزت والے، تو اپنی عزت میں بڑا ہی عزت والا ہے، اپنی عزت کے ذریعے مجھے عزت دے، اپنی نصرت سے مجھے قوت دے، مجھ سے شیطانوں کی بد کرداریاں دور رکھ، اپنے دفاع کے ساتھ میرا دفاع فرما، اپنے فعل کے ذریعے میرا بچاؤ کر، اور مجھے اپنی بہترین مخلوق میں قرار دے. اے یگانا، اے یکتا، اے تنہا، اے بے نیاز. بجائے اس کے کہ ہم غیر معتبر اور سنی سنائی باتوں پر عمل کریں، ہم معصومین سے منسوب حرز، دعائیں، مناجات کے ذریعے اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دیں، اور اپنی حاجات اللہ سے طلب کریں. امام علی نقی علیہ السلام اور آپ کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام سامرہ میں اس محلے میں رہے جسے عسکر کہتے ہیں، اور یہ سامرہ فوجی چھاؤنی تھا، کوئی ایسا بڑا شہر نہیں تھا، ایک نیا دارالحکومت تھا جہاں وزیروں، رئیسوں اور حکومتی اہلکاروں کے علاوہ اتنے لوگ موجود تھے جن کی حکومتی اہلکاروں کو ضرورت تھی. इस शहर को मोहतसिम ने तामीर करवाया था ताकि अपने करीबी तुर्क गुलामों को वहाँ पर बसा सके। तुर्क अफराद चूँकि नौ मुस्लिम थे, नए मुसलमान हुए थे, इसलिए ये लोग अहले बैत और मोमिनीन को नहीं पहचानते थे, बल्कि ये लोग इस्लाम से भी अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं थे, लिहाजा ये लोगों के लिए मुश्किल खड़ी करते रहते थे। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मदीने में ही रहे। जब आप मनसब इमामत पर फाइज हुए हैं तो ये वो वक्त था जब अब्बासी हुक्मरानों ने आइम्मा किराम अलैहिस्सलाम और अलवियों से दुश्मनी दोबारा से शुरू कर दी थी, जबकि इससे पहले का कुछ ज़माना अमन का मिल गया था। इमाम मदीने में इमामत की जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे, लेकिन हुकूमत की जानिब से इमाम की निगरानी की जाती रही, यहाँ तक कि इमाम की उम्र मुबारक 20 साल से ज़्यादा हो गई और इस अरसे में इमाम दूर दराज इलाकों के लोगों के लिए इल्म का सरचश्मा बन गए। आपकी शोहरत फैल गई थी दूर दराज तक, हर तरफ से लोग अपनी दीनी मुश्किलें हल कराने के लिए आपसे रुजू करते थे, लोग आपसे मोहब्बत करते, आपके गिर्द जमा रहते, ना सिर्फ तालिबे इल्म बल्कि उलमा आपसे वाबस्ता रहते, शिया आपसे राबता रखते थे। इमाम के ज़माने में पहले से कहीं ज़्यादा लोग खतो किताबत के ज़रिए दीन के मसाइल दरियाफ्त करते थे। तमाम इस्लामी इलाकों में इमाम को बुलंद मकाम हासिल था। इन हालात ने इमाम के ख़िलाफ़ हुक्मरानों का गुस्सा भड़का दिया और हुक्मरानों ने ये चाहा कि इमाम और लोगों के दरमियान हाइल हो जाए और इमाम को अपने पास दारुल हुकूमत में क़याम करने पर मजबूर किया। ये हुक्मरान इमाम के मकाम से, उनकी इज्जत से, शोहरत से हसद करते थे और जब इमाम को दारुल हुकूमत में क़याम पर मजबूर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद इमाम की इज़्ज़त शोहरत में इजाफा ही होता चला गया। उस ज़माने में लोगों के दिलों में इमाम से किस कदर मोहब्बत थी, उनकी क्या कदर व मंजिलत थी, इसका इजहार अहले सुन्नत आलिम इब्ने जौज़ी ने तज़किरतुल ख़वास में बयान किया है। वो लिखते हैं कि जब मुतवक्किल को मदीने में इमाम के बुलंद इल्मी मर्तबे का इल्म हुआ और फिर इस बात का इल्म हुआ कि वहाँ के लोग दिलो जान से आपसे वाबस्तगी रखते हैं, तो मुतवक्किल को अपनी हुकूमत के लिए ख़तरा महसूस हुआ। लिहाजा उसने यहया इब्ने हरसमे को बुलाकर कहा कि तुम मदीने जाकर इमाम के हालात का जायज़ा लो और उन्हें हमारे पास ले आओ। यहया इब्ने हरसमे का बयान है कि जब मैं मदीने गया, जूँ ही शहर में दाखिल हुआ तो लोगों में रोने का ऐसा शोर बरपा हुआ जैसा कभी नहीं सुना गया था, क्योंकि लोगों को इमाम के लिए ख़तरे का एहसास हो गया था और उसकी वजह ये थी कि इमाम लोगों के साथ हमेशा भलाई करते थे, अक्सर मस्जिद से वाबस्ता रहते, तलब दुनिया से कोई सरोकार नहीं रखते थे। इमाम को सामर्रा बुलवाए जाने की वजह ये बताई गई कि हरमैन के इमाम जमात ने मुतवक्किल को ख़त लिखा था कि अगर तुम्हें मक्का मदीना की ज़रूरत है तो अली नकी अलैहिस्सलाम को इस इलाके से दूर कर दो, क्योंकि उन्होंने यहाँ के अक्सर लोगों को अपना फरमाबरदार बना लिया है। कुछ और लोगों ने भी मुतवक्किल को इसी मज़मून के खतूत लिखे थे। अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद वाली मदीना भी इमाम को अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचा था और कई खतूत इस सिलसिले में उसने भी मुतवक्किल को लिखे, जो कि मुतवक्किल का गुस्सा भड़काने का सबब बने। जब इसकी इत्तला इमाम को हुई तो इमाम ने मुतवक्किल को लिखा कि वाली मदीना मुझे अज़ियत पहुँचाता है और जो कुछ मेरे मुतालिक कहा गया वो झूठ है। मुतवक्किल ने इमाम को ख़त लिखा जो कि मसलहत की बिना पर एहतराम आमेज़ था, ज़ाहिरन एहतराम आमेज़ था। उसने लिखा कि वाली मदीना ने आपसे नारवा सलूक किया, लिहाजा उसका मनसब बदल दिया है, मेरी ख्वाहिश है आप यहाँ तशरीफ़ लाएं। अच्छी खासी बातें उसने लिखी थी ख़त में और ज़ाहिरन महज़बाना तरीक़े से ख़त लिखा था और ऐसे ज़ाहिर किया था मुतवक्किल ने अपने आप को, गोया मुतवक्किल कोई नेक पारसा शख्स है जो कि अल्लाह के वली से एहतराम से पेश आ रहा है, जबकि मुतवक्किल अली और आले अली अलैहिस्सलाम से और हर उस शख्स से दुश्मनी रखता था जो कराबत या किसी और वजह से अहले बैत के साथ ताल्लुक़ रखता हो। इमाम उसके बातिन को, मुतवक्किल के बातिन को खूब समझते थे और इमाम जान गए थे कि अब वो मदीने में नहीं रहने देगा। ये मुतवक्किल अहले बैत से खुली दुश्मनी रखने में मशहूर था। इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मिसमार करा के उसको ज़मीन के बराबर कर दिया और हुक्म दिया था कि यहाँ खेती बाड़ी की जाए ताकि रोज़े का निशान मिट जाए। इसी ने ज़ायरीन की बड़ी तादाद को कत्ल कर डाला और इसके साथ ही उन पर भारी टैक्स आयद किए और उनके लिए तरह तरह की सज़ाएं मुकर्रर की थी ताकि वो ज़्यारत से बाज आएं। ऐसुल मकाल में रिवायत नकल हुई है कि मुतवक्किल ने एक शख्स को मक्के और मदीने का गवर्नर मुकर्रर किया था। उस शख्स ने लोगों को औलाद अबू तालिब अलैहिस्सलाम से नेकी करने से रोका, यहाँ तक कि औलाद अबू तालिब अलैहिस्सलाम यानी औलाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर इतने सख्त हालात हो गए थे कि अलवी ख़वातीन के पास एक लिबास सही और सालिम हालत में बाकी नहीं बचा था जिसे पहनकर नमाज़ पढ़ सकें, सिवाय एक पुराने कुर्ते के जो उनके पास बाकी रह गया था, जिसे बारी बारी पहनकर नमाज अदा करती, यहाँ तक कि मुतवक्किल वासिले जहन्नुम हुआ। इससे मालूम होता है कि मुतवक्किल का ज़माना इमाम पर कितना सख्त गुजरा होगा। बहरहाल, जब मुतवक्किल ने यहया इब्ने हरसमे को मदीने भेजा ताकि वह इमाम को मुतवक्किल के पास लेकर आए, तो यहया का बयान है कि मुतवक्किल के हुक्म के मुताबिक मैंने इमाम के मकान में दाखिल होकर तलाशी ली, लेकिन वहाँ से कुरान शरीफ, दुआओं और दूसरी इल्मी किताबों के अलावा कुछ नहीं मिला। वो कहता है कि इससे मेरे दिल में इमाम की अजमत बैठ गई, और जब मैं मुतवक्किल के पास पहुँचा और उसने मुझसे इमाम के मुतालिक दरियाफ़ किया, तो मैंने मुतवक्किल को इमाम की दयानतदारी, खुदा तरसी और इबादत का हाल बताया। शेख मुफीद अलैह रहमा की रिवायत से ये साबित होता है कि इमाम जिस रोज़ सामर्रा पहुँचे हैं, उस रोज़ मुतवक्किल ने इमाम को मिलने का मौका नहीं दिया, बल्कि आपको एक सराय में रखा और उस रोज़ आप वहीं रहे। मुतवक्किल ने ये सलूक नाऊज़ु बिल्ला इमाम की तौहीन की खातिर किया था, और इमाम को जिस जगह रखा गया वो अच्छी जगह भी नहीं थी। सवाल इब्ने सईद से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैं सामर्रा गया, इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने इमाम से अर्ज़ की कि इन सितमगरों ने तमाम उमूर में आपके नूर को बुझाने और आपके ज़िक्र को छुपाने की कोशिश की है, यहाँ तक कि आपको ऐसी जगह उतारा है जो गदागरों और बेनामो निशान गरीब मुसाफिरों के ठहरने के लिए है। इमाम ने फरमाया, ए सईद के बेटे, अभी तक तुम हमारी कदरों मंजिलत के पहचानने में इस दर्जे पर हो और तुम समझते हो कि ये चीज़ें हमारी शान की बुलंदी के मनाफी हैं। तुम ये नहीं जानते कि जिसे खुदा बुलंद करे वो इन चीज़ों से पस्त और हकीर नहीं होता। फिर इमाम ने अपने दस्ते मुबारक से एक तरफ इशारा किया, और जब मैंने उस तरफ देखा तो मैंने कई बागात देखे जो मुख्तलिफ फूलों से आरास्ता थे, और ऐसे गुलिस्तान देखे जो मुख्तलिफ किस्म के मेवों से सजे थे, और ऐसी नहरें देखी जो उन बागों के सहन में जा रही थीं, हूरों गुलमान देखे कि जिनकी मिसल मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी, और ये सब देखकर मेरी निगाहें हैरान और अक्ल परेशान हो गई। इमाम ने फरमाया, हम जिस जगह भी जाएं ये चीज़ें हमारे लिए मुहैया हैं, और हम गदागरों के सराय में नहीं हैं।